मित्रों नमस्कार। आइए आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि अभी अभी जो मुख्य परीक्षा हुई है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, वह इनफैक्ट कितनी कठिन थी या कि वह कितनी सरल थी। और इसके माध्यम से इनफैक्ट सच यह है कि आप मुख्य परीक्षा के चरित्र के बारे में एक थॉट अपने दिमाग में ला सकते हैं कि यह कितनी कठिन है और यह परीक्षा कितनी सरल है। आइए थोड़ा सा इसका जायजा लेते हैं। लेकिन एक अर्ज मैं आप सबसे करना चाहूंगा कि या तो मेरे इस ऑडियो को आगे सुनने से पहले, या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा कर ही लिया हो कि अभी जो मेंस के एग्जाम हुए हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपने पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े हों तो एक बार आप उसे जरूर पढ़ लें। और यदि आप एक साल से तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि शायद मेरी ये बातें आपके लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकेंगी। आइए हम पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य परीक्षा यदि कठिन है, और इनफैक्ट ये कठिन है भी, तो वह क्यों है, यानी कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो इस परीक्षा को कठिन बना देती हैं। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है दोस्तों, जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे 20 प्रश्न एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उन 20 प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल नए हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा आपको महसूस होता है। वो सिलेबस से बाहर तो नहीं होते, लेकिन आप यूं कह लीजिए कि चूंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, तो आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। चलिए आपको लगता है कि ये बाहर के हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई सिलेबस से बाहर का प्रश्न आ गया है तो उसे हल करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, तो क्वेश्चन पेपर को कठिन बना देता है। लेकिन यहां लॉजिकली सोच करके देखिए कि यदि वह आपके लिए कठिन है, आपके लिए सिलेबस से बाहर है, तो वो सबके लिए सिलेबस से बाहर है, और आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये कोई सामान्य सी परीक्षा नहीं दे रहे, तो अगर कोई चीज सबके लिए कठिन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में रटा रटाया उत्तर मौजूद नहीं रहता है, यानी कि आप बने बनाए उत्तर यहां सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को परोस कर नहीं आ सकते, यानी कि आपके दिमाग को उत्तर बनाने पड़ते हैं। आप प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग को सोचना पड़ता है, अच्छा इसमें मुझे किन किन पॉइंट्स को कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, कैसे मुझे अपने उत्तर की शुरुआत करनी है, और ये सब करने में आप थोड़े से द्वंद में फंस जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं। और ऐसा केवल 2-4 प्रश्नों के लिए नहीं करना पड़ता, यदि आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हर कुछ मिनट के बाद, 8-9 मिनट के बाद आपको इस दौर से गुजरना पड़ता है, और यह एक कठिन काम है, यह आसान बात नहीं है। तीसरी जो बात है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्वरूप कुछ इस तरीके का होता है कि वो आपसे एनालिसिस के डिमांड करते हैं कि आप तार्किक रूप में अपने उत्तर लिखें, और केवल तार्किक रूप में ही नहीं बल्कि कुछ इस तरह की बातें भी पूछ ली जाती हैं जहां आपकी मौलिकता का जायजा लिया जा सके कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। पहले से तो आपने सोच कर रखा नहीं है, यहां आने के बाद पता लगा कि इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए था, और यह आपको फट से करके देना है, तुरंत ही बताना है, यानी कि समय का दबाव लगातार आपके दिमाग पर काम कर रहा होता है। 3 घंटे का समय है, 180 मिनट, और इसमें 20 प्रश्न आपको हल करने हैं, एक प्रश्न के लिए है 9 मिनट, और टोटल आपको जो शब्द लिखने हैं वे हैं 4000, एक प्रश्न एवरेज 200 मार्क्स, एक प्रश्न एवरेज 200 शब्दों में लिखना होता है, तो 400 शब्द और 180 मिनट। तो यहां आपको सोचने की अपनी जो रफ्तार है उसको भी बहुत तेज और धारदार बनानी होती है, और लिखने की स्पीड को भी, और फिर जो आप सोच रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उनके बीच में एक बेहतर जुगलबंदी होनी चाहिए, यानी कि आपकी भाषा बहुत स्पष्ट हो, और साथ ही साथ जो बात आप लिख रहे हैं वे तार्किक रूप से सही हों, और सिलसिलेवार इस तरीके से पृष्ठ पर उतरें जैसे कि कोई पानी बह रहा हो। तो डेफिनेटली ये बातें आसान नहीं है। हो सकता है कि सुनने में ये बातें सरल लग रही हो कि ठीक है इसमें क्या ऐसी बड़ी बात होगी, जब आएगा तो हम लिख लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन मित्रों ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आपके दिमाग को इस तरह की आदत नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं अक्सर कहा करता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन ही अपने आप में आप कह लीजिए कि सिविल सर्वेंट बनने की प्रिपरेशन हो जाती है। अब मैं आता हूं इसके दूसरे भाग पर और वह है कि यह सरल कैसे है, क्या सच में यह सरल है या सरल बिल्कुल नहीं है। दोस्तों डेफिनेटली यह कठिन तो है लेकिन इतनी कठिन नहीं है कि हम इसे कह दें कि पूरी तरह से यह कठिन ही कठिन है, इसमें सरलता का कोई तत्व है ही नहीं, इसमें सरलता के बहुत से तत्व हैं। और जब हम इस सरलता और इस कठिनता इन दोनों को मिला देते हैं तो जो ये पूरा का पूरा इसका जो स्वरूप बनता है वो हमें हमारे लिए बहुत ही प्यारा बन जाता है, हमारे लिए बहुत ही विश्वसनीय बन जाता है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें सरलता का एहसास दिलाने के लिए सफिशियंट है? आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए तो आप पाएंगे कि हर साल के क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं डिटेल में इसके बताने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें और इस मेरे बात पर विचार करें तो आपको मेरी इस बात पर पूरा भरोसा हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, यह बात अलग है कि क्वेश्चन ज्यों के त्यों रिपीट नहीं होते, उनका चरित्र बदलता रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं बदलता रहता कि आपने जो उस टॉपिक पर पिछली तैयारी की है वो बेकार हो गए। दूसरा बिंदु फ्रेंड्स वो ये है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलेबस के अंदर से ही होते हैं, सिलेबस से बाहर के नहीं होते। और तीसरा जो इसे सरल बनाने वाला बिंदु है वो ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो करंट अफेयर्स से होता है और करंट अफेयर्स आपके दिमाग में ताजगी के साथ मौजूद होते हैं क्योंकि उन्हें आपने अभी अभी पढ़ा है, पिछले 1.5-2 साल से पढ़ा है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने में आप इतना वक्त तो लगाते ही हैं। किताबों में जो चीजें आप पढ़ते हैं, जो बातें पढ़ते हैं वो थोड़ी सी बासी सी हो सकती है, नीरस सी लग सकती हैं, लेकिन जो करंट अफेयर से जुड़े हुए जो घटनाएं होती हैं वो तो जीवंत रूप में आपके सामने होती हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें समझ रहे हैं। मतलब वहां आप सिद्धांत को नहीं पढ़ रहे हैं, वहां आप व्यवहार को पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो यह अनुच्छेद है ये किस तरीके से पॉलिटिक्स में दिखाई दे रहा है, यानी कि आप एक प्रकार से जो स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का उन्हें प्रैक्टिकल के तौर पर देख भी रहे हैं और यह जो देख कर समझने की बात है वो आपको बहुत मजबूत बना देता है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस काफी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यह भी बिंदु इस एग्जामिनेशन को सरल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आप देखिए कि जब आप किसी भी टॉपिक पर लिख रहे होते हैं तो आपको कितने शब्दों में लिखना होता है, एवरेज 200, एवरेज 200। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं या तो 150 शब्दों में लिखने होते हैं या 250 शब्दों में लिखने होते हैं। 150 शब्दों में किसी भी टॉपिक पर ठोस तरीके से लिख पाना क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरल होना चाहिए? अधिकतम 250 शब्द, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक को बहुत विस्तार से जानना नहीं है, उसको अच्छे तरीके से जानना है, उसके मुख्य बिंदुओं को जानना है। तो ये जो पॉइंट है ये न केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की एक मर्यादा निर्धारित कर देता है, एक सीमा बना करके एक बहुत ठोस दिशा दे देता है, बल्कि सच पूछिए तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके दिमाग को सोचना पड़ रहा है उसको भी कम कर देता है और इस तरीके से दिमाग को थकने से बचा देता है। तो मुझे लगता है कि जो शब्दों की सीमा है यह भी मुख्य परीक्षा को सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दोस्तों जब किसी भी उत्तर में आपको ढेर सारे फैक्ट डालने पड़ते हैं तो दिमाग ज्यादा थकता है, बहुत से फैक्ट हमसे गायब भी हो सकते हैं, उस समय लिखने में ना आए, लेकिन यदि आपको विवेचना करनी है, उसका विश्लेषण करना है, तो जरूरी नहीं कि उसमें आप ढेर सारे जो तथ्य हैं वो दें। सच पूछे तो उसमें तथ्यों का रोल बड़ा कम हो जाता है और विश्लेषण का रोल बढ़ जाता है। यह भी आपकी मदद करता है, क्योंकि तथ्यों को याद करना जरा मुश्किल होता है, विवेचन करना उतना मुश्किल नहीं होता, बशर्ते कि आपने अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार कर लिया हो, आपने इस तरीके से पढ़ाई की हो। फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए, आप इन पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और फिर जब आप इन दोनों को मिला करके इस एग्जामिनेशन के बारे में सोचेंगे तो न केवल आपकी दृष्टि ही सही होगी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्रति आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और शायद इससे प्रेम भी हो जाए। तो आप इन सब पर थोड़ा सा विचार करें। तो दोस्तों, आज के इस मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। आप जानते हैं कि हमारी जो एकेडमी है वो 15 दिन की क्लासेस ऑर्गेनाइज करती है। अभी जो क्लास होनी है वो 7 से 21 मार्च को होनी है। इसके लिए हमारे 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और इन 2 स्टूडेंट्स के नाम हैं राकेश कुमार जो बेगूसराय बिहार से हैं और शिवांग तिवारी जो रीवा मध्य प्रदेश से हैं। दोस्तों, अंत में ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इनमें से 2 मित्रों के नाम हैं मनीष चौहान गाजीपुर उत्तर प्रदेश से और शुभम वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।